सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय के छठे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तावत् वयम् द्रविण देहसु हृन्निमित्तम् शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेति असत् अवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न ते अंघ्रि अभयम् प्रवणीत लोकः। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। तात्पर्य, कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे तो किस प्रकार वह सदैव भगवान के ही नाम यश गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। इस तरह वह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्र तृप्ति के निमित्त न होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्र भोग के लिए। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, जिस तरह वह संसारिक व्यक्ति के लिए होता है। किंतु भक्त हर वस्तु को भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है। अतः धन संग्रह रूपी विष दंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल दिया जाए तब वह किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता। इस तरह भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते हैं और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक संसारिक मामलों के फंदे में नहीं फंसता। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्व पदांति कम। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ गर्भोदय वृक्ष के नाभि से जो कमल उगा उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे थे कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये कमल का स्रोत क्या है। तो उसने देखा ब्रह्मा जी ने कि जो कमल है उसकी जो नाल है पानी में से निकल रही है। तो उसने पानी में डुबकी लगाई ब्रह्मा जी ने, और पानी में डुबकी लगाई और कोशिश की ढूंढने की उसका स्रोत कहाँ पर है। पता चल जाए कि नाल का जो आधार है वो क्या है। सो काफ़ी देर तक ब्रह्मा जी उसमें गोता लगाया ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी ढूंढ नहीं पाए, है ना। सो निराश होकर वापस कमल के फूल पर आकर बैठ गए। पानी में भी कितने देर तक तैरते रहेंगे अकारण। तो उनको प्रेरणा मिली तप करने की। तो ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तो 100 दिव्य वर्षों तक तप करने के पश्चात ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान के दर्शन हुए, और ब्रह्मा जी के मन में जो है इच्छा थी कि सृष्टि की रचना करें। और सृष्टि की रचना क्यों करें, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जब तक सृष्टि की रचना नहीं हुई थी हम लोग भगवान के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए थे। तो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहने के कारण हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने, और भगवान की इच्छा थी कि सारे जीव सक्रिय हों, और सक्रिय होने के बाद सब जीवों को मौका मिले कि भगवान की सेवा कर पाए। सो वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि करने की प्रेरणा हुई। तो ब्रह्मा जी ने जब 100 वर्षों तक तपस्या की तो अपने हृदय में वो भगवान के दर्शन कर पाए। तो 8वें अध्याय तक हमने देखा कि ब्रह्मा जी सक्षम हुए तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर भगवान का अपने हृदय में दर्शन करने के लिए। सत्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ, तो जिन्होंने अपनी आँखों में भक्ति का सुरमा लगाया हुआ है, हाँ, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो सदैव हमेशा, ऐसा नहीं कि एक क्षण देखा और बात खत्म हुई। सो कई लोग बोलते हैं कि हमने सपने में भगवान को देखा, नहीं, कई लोग बोलते हैं, या कई बार हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं अपने हृदय में। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक है ये, मन की कल्पना है। हाँ, जब भगवान के दर्शन होंगे तो सदैव होंगे। हाँ, और हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान हमें दर्शन देंगे तो हम देख सकते हैं। हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते? योग माया समावृता, भगवान हर एक के लिए दर्शनीय नहीं है, हर कोई भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान ने योग माया का पर्दा लगाया हुआ है ना। इसीलिए ईशोपनिषद में जो भक्त हैं वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हे कृष्णा प्लीज, आप ये जो इतना चमकदार पर्दा है आप प्लीज इसको हटा लीजिए। आप प्लीज इस पर्दे को हटा लीजिए। क्यों हटा लीजिए? ताकि मैं आपके कमल मुख के दर्शन कर पाऊँ। जब तक भगवान उस पर्दे को नहीं हटाएंगे, जब तक भगवान ये इच्छा नहीं करेंगे कि एक भक्त मेरा दर्शन कर सके, हम कितने ही प्रयास कर लें हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति रात में कितनी कोशिश कर ले सूर्य को देखने की, सूर्य को नहीं देख सकता। जब सूर्य स्वतः जब उदय होगा तो कोई परिश्रम के बिना हम तुरंत सूर्य को देख पाएंगे। इसी प्रकार जब हम प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रयास के फलस्वरूप हमें दर्शन होंगे। जब भगवान कृपा करेंगे, जब भगवान को लगेगा कि हाँ मैं इस भक्त को दर्शन देना चाहता हूँ, तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। आप बोलो ये क्या बात है? जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा हक है भगवान के दर्शन करना। तो भक्ति सिद्धांत का सरस्वती ब्रह्म संहिता की टीका में कह रहे हैं कि कृष्णा जो है वो एक निरंकुश तानाशाह है। कृष्णा पे किसी का कोई लॉजिक नहीं चलेगा। आप कृष्णा को ये नहीं कह सकते देखो मैंने ये किया तो आपको ये करना पड़ेगा। कृष्णा करते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्णा नहीं करते, लेकिन बाध्य नहीं है। कृष्णा किसी की भी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी कृष्ण को मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा निरंकुश तानाशाह। निरंकुश तानाशाह, आप कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते कृष्णा को। आप कृष्णा को ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूं आप मुझे क्यों धुतकार रहे हो। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी चर्चा की। हाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी इच्छा है आप गले लगा लो। शिष्याष्टकम का 8वां जो श्लोक है, हाँ आपकी इच्छा है आप मुझे गले लगा लो, अच्छी बात है, नहीं तो अगर चाहिए तो मुझे अपने पैरों से मसल दो कीड़े की तरह। अगर तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक भजन है ना ठेली हो रांगा पाए, कि उसमें भक्त भगवान से श्रीमती राधा रानी से प्रे करें कि मुझे आप अपने जो बहुत ही सुंदर रांगा, रांगा मतलब बहुत ही सुंदर जिस पर तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, आप प्लीज मुझे ये इतने सुंदर चरण कमलों से मुझे धकेलिए मत। ना ठेली हो, ठेली हो मतलब मुझे धकेलिए मत। ना ठेली हो रांगा पाए, मुझे प्लीज मत धकेलिए। हमारे एक वैष्णवाचार्य हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि ठेले दो। भक्त कह रहे हैं ना ठेली हो रांगा पाए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ठेले दो, धकेलने दो, कम से कम उनका चरण स्पर्श तो मिलेगा। नहीं अगर भगवान श्रीमती राधा रानी हमें अपने पैरों से मसल दे अगर अच्छा है, भगवान का चरण स्पर्श मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चाहे तो गले लगा लो, हाँ, चाहे तो पैर के नीचे से मसल दो। तो पैर के नीचे से मसला, पैर से मसल दिया तो भी कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पैर से भी नहीं मसला, देखा ही नहीं मेरी तरफ, पूरी तरह से तिरस्कार करके चले गए। यहां से आ रहे हो भगवान, वहां से देख के चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा भी नहीं तो भी आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे, है ना, आप मेरे प्राणों के नाथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। सो भगवान की इच्छा होगी तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। उसमें कुछ दुखी होने की बात नहीं है, है ना। कई बार कई लोग जो भक्त हैं वो जिस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं मुझे अपनी शरण दो, मुझे दीक्षा दीजिए। तो गुरु कई बार कहता है कि अभी प्रतीक्षा करो, तो उसका बेचारे का दिल टूट जाता है। सो मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं देखो हम गए थे, उन्होंने मना कर दिया। अरे मना नहीं किया, वो आपको मौका दे रहे हैं अपनी श्रद्धा को और अधिक गाढ़ा करने के लिए। रिजेक्ट नहीं किया, आपके प्रति गुरु और अधिक दयालु है। कई लोग होते हैं अब तो भक्त कहते हैं वो वाला भक्त है, वो मेरे से भी क्या कुछ रहे, उसको दीक्षा के लिए हाँ बोल दी, मुझे मना कर दिया, होता नहीं होता, हाँ। अरे उसको इसलिए हाँ बोल दी कि उसको ना बोली तो भाग जाएगा, हाँ। आपको ना इसलिए बोला क्योंकि आप पे भरोसा है कि आप भागोगे नहीं, आप और ज्यादा से प्रयास करोगे तो गुरु आप पे ज्यादा कृपालु है। तो गुरु अगर किसी के सिर पे हाथ फेरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डांट दे तो उससे भी अच्छी बात है, है ना। कई लोगों को हम देखते हैं कि गुरु सामने से जाके उसको पूछते हैं अरे क्या हाल है तुम्हारा, और कई भक्त हैं रगड़ रहे हैं अपने आप को, देखते नहीं उसकी तरफ। तो किस पे ज्यादा दया कर रहे हैं गुरु, किस पे ज्यादा दया कर रहे हैं, जिसकी ओर देख भी नहीं रहे उससे गुरु का ज्यादा संबंध है, क्योंकि गुरु को पता है इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका हालचाल भी नहीं पूछा, इसको खाने को भी नहीं मिला, तो भी ये इसकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुरु कभी आपकी तरफ देखना भूल गए गलती से तो बुरा मान जाओ, बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या है गुरु हमारी तरफ देखे या कृष्ण हमारी तरफ देखे, अभी हमें बहुत सारा प्रयास करना बाकी है, है ना। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम इस श्लोक की बात करें तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संसार के सारे लोग भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, उद्विग्न मतलब परेशान रहते हैं। जो है उसको बनाए रखने के लिए परेशान है, जो नहीं है उसको पाने के लिए परेशान रहते हैं। और भागवत में भी कहा गया है प्रायेण अल्पायुषा सभ्या, हाँ, कि जो कलयुग के लोग हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, आयु कम है, तरह तरह की चिंताएं हैं और उनसे लगातार परेशान रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप बार बार डस रहा है, बिच्छू काट रहा है, जैसे बार बार, है ना। कई लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते सुसाइड। और ज्यादातर जो सुसाइड करते हैं आप देखो बिल्कुल हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन उनका मन उनको इतना परेशान कर देता है कि पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। सोचते हैं आशा की कुछ किरण ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता हमारे साथ में। अच्छा, तो क्यों ना इस जीवन को समाप्त कर दें। क्यों समाप्त कर दें? क्योंकि सारी प्रॉब्लम इसी जीवन के साथ है। अगला जन्म हो सकता है अच्छा मिलेगा। वो ये नहीं सोच रहे कि जो आपके कर्म फल है आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप एक जन्म में भोग लो चाहे उसी को करोड़ों जन्मों में भोग लो। कई लोग पंडितों के पास जाते हैं, नहीं उपाय कर दीजिए, बहुत तकलीफ है, हाँ वो तकलीफ का निवारण कर दीजिए। जाते नहीं जाते, हाँ क्या बकवास है। आप अगर कहीं से आपने कुछ लोन लिया, पैसा उधार लिया, तो एक महीने बाद चुकाओगे तो कम पैसा देना पड़ेगा कि एक साल के बाद चुकाओगे कम पैसा देना पड़ेगा? जितना जल्दी ऋण चुकाएंगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा ना। तो जो हमारे पाप कर्म है जितना जल्दी भुगतान करेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए तो कुंती महारानी कह रही है कि हे भगवान, जब कष्ट थे तो अच्छा था, नहीं इसलिए कुंती महारानी बोल रही है, कष्ट थे आपको याद करने की शक्ति थी। अभी कष्ट खत्म हो गए तो इधर उधर दाएं बाएं हर तरफ दिमाग भाग रहे हैं। पहले कुछ सूझ ही नहीं रहा था, एक ही तरफ दिमाग चल रहा था कि कुछ आशा की किरण नहीं है, एक ही उपाय हो सकता है कि अगर कृष्ण ही आकर रक्षा कर ले, और कृष्ण ने रक्षा की। हाँ जो मन है और जो हमारी इंद्रियां है ये हमें लगातार लगातार हमें परेशान करती हैं, हमें भौतिक जगत में रखने की भी जिम्मेदार है और इसके अंदर दुख पहुंचाने की भी जिम्मेदार है। तो हमारे जो ये इंद्रियां हैं और जो मन है इनको दुर्दांत कहा गया है, बहुत ही जालिम है। लगातार कुछ रहम नहीं आ रहा, अरे एक मिनट सांस तो लेने दो। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, नहीं एक क्षण का भी समय नहीं देते कि चल एक इच्छा पूरी की है, इतना परिश्रम किया, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। भागवतम में कहा है लोग इतनी तेजी से भागते हैं, परिश्रम करते हैं कि मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो मुंह से झाग निकलती है। इसी प्रकार जब मनुष्य बहुत ही ज्यादा परिश्रम करता है तो मुंह सूख जाता है, मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है। ऐसे लोग कंपनियों को बहुत पसंद आते हैं। सो आजकल ट्रेंड है, आप देखोगे कि जो भौतिक दृष्टि से सफल लोग हैं वो ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, काम में लगे हुए हैं। उनको बोलो भाई कुछ खा लो तो अच्छा एक ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी दे दो। क्यों ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी दे दो? क्योंकि कड़वाहट होती है, पहले जिंदगी में कम कड़वाहट है कि और कड़वी चीज दे दो, तो कड़वी ब्लैक काली चाय और काली कॉफी क्यों पीते हैं? ताकि जी पर कड़वाहट रहेगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आने से और तेजी से जो है दौड़ेंगे, काम करेंगे, क्या बेवकूफी है। और कंपनियां लास्ट में पूरा महीना मेहनत किया तो लास्ट में एक अगर कोई ईमेल आ जाए वेरी गुड तो उसको लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। और अगर ऐसा नहीं कि हर बार वो ईमेल आएगी, कई बार नहीं भी आती। और कई बार जो बॉस है वो बोल देता है यार कमी है कुछ और मेहनत करो, तो व्यक्ति सोचते हैं हाँ यार और मेहनत करनी चाहिए, मेरा बॉस कितना अच्छा है, मुझे समझा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और काम करने के लिए। गधे को डंडा पड़ रहा है और वो सोच रहा है देखो मेरा मालिक कितना दयालु है, मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, डंडा खा रहे हैं, ना सैलरी बढ़ रही है ना छुट्टी मिलती है, काम किए जाओ। फिर भी सोचता है देखो मेरा मालिक कितना अच्छा है, इतने इतने मंद अक्ल जो है, बिल्कुल बुद्धि खत्म हो चुकी है। कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। विवेक कहते हैं शक्ति को जिससे हम सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वो शक्ति कलयुग में और ये जो अपने इंद्रियों को अपने घर वालों को संतुष्ट करने की जो इतनी प्रबल इच्छा है उसने हर लिया है हमारी सही और गलत सोचने की शक्ति। अगले श्लोक में आप देखोगे ब्रह्मा जी इसी विषय में बात कर रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लोग इतने परेशान हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और वो कह रहे हैं कि जब तक वे आपके अभय चरण की शरण स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो ऐसी चिंताओं से भरे रहेंगे। और ब्रह्मा जी ने बिल्कुल यही बात, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए, जब ग्वाल वालों को चुरा लिया था और भगवान ने उनको सीख दी, उनको सबक सिखाया जब कि आपने गलत किया है, और ब्रह्मा जी को होश आया तो ब्रह्मा जी ने उस समय दोबारा भगवान को अलग अलग स्तुतियाँ की, भगवान की प्रार्थनाएं की। वो जो प्रार्थनाएं हैं वो भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित हैं, आप पढ़िए बहुत अच्छी उसमें कथाएं दे रहे, बहुत अच्छी स्तुतियाँ ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी 36वें श्लोक में कह रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत रागा व्यास्ते नास, तो तब तक, तावत का मतलब है तब तक रागा दया स्तेनास, तब तक जो रागा दया मतलब इच्छाएं, स्तेना मतलब चोर, हमारी जो इच्छाएं हैं वो तब तक चोर बनी रहेंगी, तब तक चोर बनी रहेंगी, हमारी सुख शांति को हर लेंगी। इच्छाएं कर क्या रही है, सुख शांति को तो हर रही है, है ना। चैतन्य चरितमृत में वर्णन भी है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है ना, जो भुक्ति जो भोग के पीछे लगा हुआ है या जिसको मुक्ति की भी इच्छा है, सकले कामी जिसको इच्छा है, सकले अशांत, वो सारे अशांत है, परेशान है, बुरी तरह से दुख भोग रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्यों अशांत है? क्योंकि उनका सुख चैन संतोष जो है इच्छाओं ने हर लिया है। कामी, कामी का मतलब जिसकी इच्छा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत रागा दया स्तेनास, तब तक जो हमारी इच्छाएं हैं वो चोर बनी रहेंगी। तावत कारा ग्रहम ग्रहम, और जो हमारा घर है तावत तब तक काराग्रहम, तब तक जेल बना रहेगा। आप बोलो मेरे घर को जेल क्यों बोल रहे हो? तो क्या जेल नहीं है? क्या आप अपने घर से एक महीना दूर रह सकते हो? क्या आप में ताकत है? नहीं रह सकते। लोग जाते हैं वृंदावन, घर भी खरीद लेते हैं। बहुत सारे दिल्ली के लोगों ने वृंदावन की प्रॉपर्टी के रेट ही बढ़ा दिए हैं। जो चीज 10,000 में मिलती थी आज 5,00,000 रुपए में भी नहीं मिलती वहां पर। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सारे लोगों ने वहां पर जगहें खरीद ली हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि वृंदावन में रहने का अधिकार वहां पर जगह खरीदने से नहीं होता। वृंदावन में रहने का अधिकार मिलेगा गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से। वृंदावन में आप घर खरीद कैसे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है वृंदावन में घर खरीदना। चिंतामणि प्रकर सद मसु कल्प वृक्षा, वृंदावन की रज का एक एक कण चिंतामणि है। आप चिंतामणि पत्थर कैसे खरीद सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। कैसे ऐसी जगह पर जहाँ हर कण हर पत्थर चिंतामणि है, जहाँ पर हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, आप कैसे सोच सकते हो कि हमने वहाँ पे घर बना लिया? बिल्कुल भौतिक विचार है वृंदावन में घर बनाना। वृंदावन में रहने का अधिकार केवल और केवल गुरु की आज्ञा से मिल सकता है, और कोई चारा नहीं है। तो लोग जाते हैं वहां पर घर खरीद ले, वहां पर रहते हैं, दो दिन में दिमाग उलट जाता है। दो दिन रहते हैं, सोचते हैं क्या करें भैया, वहां पर सब इंतजार कर रहे होंगे, जबकि इंतजार कोई नहीं कर रहा होता। और अगर आपके काम धंधे से छूट चुके हो, अगर नौकरी आप रिटायर हो गए, अगर काम धंधा छोड़ दिया, फिर तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। उसको खूब नशे में लाके किसी से पूछोगे तो बोल देगा अरे भैया क्या अच्छा हुआ काम खत्म। लेकिन वो व्यक्ति दो दिन में दिमाग उसका खराब हो जाता है, रह नहीं पाता, वापस दौड़ता है, घर चलो घर चलो। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि वृंदावन में रह के घर के बारे में सोचने से अच्छा है कि घर में रहो और वृंदावन के बारे में सोचो। नहीं है ना? वृंदावन भजन स्थली है, लेकिन जो दिल्ली है वो कार्यस्थली है, लड़ाई का मैदान वृंदावन है। वृंदावन नहीं है लड़ाई का मैदान, दिल्ली है, बॉम्बे है, शहर है लड़ाई के मैदान। वहां पर माया से लड़ाई चल रही है, जाओ और जाके माया से लड़ाई करो और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करो। वृंदावन में जाकर घर के बारे में सोचते रहने से क्या मिलेगा? कुछ लाभ नहीं होगा, नहीं। सो इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत कारागृहम गृहम, कि जो घर है तब तक कारागृह की तरह काम करेगा, तब तक आपको बांध के रखेगा। हाँ, तावन मोहो अंग्रिम निगड़ो। निगड़ का मतलब होता है जंजीर, अंग्रिम का मतलब होता है पैर। तावत और जो मोह है, अहम ममेति, यहाँ पे बताया गया है अहम ममेति, ममेति अवग्रहम इस श्लोक में आया है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावन मोहो अंग्रिम निगड़ो, तब तक जो मोह है वो हमारे पैर में बेड़ी का काम करेगा। चाहे रेशम की डोरी है, बहुत अच्छा लगता है जब घर वाले कहते हैं कि पापा आप ज्यादा दिन के लिए मत जाना, जल्दी से वापस आ जाना, बहुत सुकून लगता है। अबे ये तो सोच लो क्यों बोल रहा है, ये सोचा नहीं कि उसने ये लाइन क्यों बोली है, क्योंकि भैया तुम रहोगे यहाँ पर तो मेरे सुख का सामान इकट्ठा करते रहोगे, नहीं मेरे बीवी बच्चों का, जिसको हम पोते पोतियाँ बोलते हैं, उसके टट्टी पेशाब साफ करते रहोगे, ध्यान रखोगे। जब हम घर से बाहर जाएंगे तो ताला लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक बूढ़ा बैठा हुआ है वहां पर चौकीदार की तरह। सही है गलत है ना? तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ पापा जल्दी आ जाना, मम्मी ज्यादा दिन मत लगाना। अबे तूने मुझे नौकर समझ रखा है अपना, पहले तेरी टट्टी पेशाब साफ की तेरे बच्चों के पीछे लग जाए, यही काम धंधा लग गया क्या हमें? इसीलिए हमारा जन्म हुआ था, और हमने तेरी सेवा की, तू आगे अपने बच्चों का करता रहे, भैया मेरी जान छोड़। लेकिन हम उसको नहीं कह पाते, क्यों नहीं कह पाते? हमने खुद ही अपने पैर में वो रेशम की डोरी बांधी हुई है, रस्सी बांधी हुई है, पतला सा धागा है, ज्यादा बड़ा धागा नहीं है, पतला सा ही है, लेकिन तोड़ नहीं रही उसको। तावन मोहो अंग्रिम निगड़ो, तब तक ये जो मोह है हमारे पैर की रस्सी बेड़ी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? सर लेट क्यों आ रही है? चलो अच्छा किया। तब तक ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और तीन बार तावत शब्द का प्रयोग कर लिया कि तब तक आपकी इच्छाएं चोरों की तरह काम करेंगी, तब तक आपका घर जेल की तरह काम करेगा, तब तक जो मोह है आपके पैरों की बेड़ी बन के रहेगा। कब तक बना रहेगा? यावत कृष्णा न तेजना, हे कृष्णा। तो ये जो प्रेयर है ये ब्रह्मा जी कृष्ण को बोल रहे हैं, जैसे ये श्लोक ब्रह्मा जी ने कृष्ण को बोला है, ऐसे ही 14वें अध्याय में दशम स्कंद के ब्रह्मा जी साक्षात भगवान कृष्ण को आमने सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हे कृष्णा जब तक न ते जना, जब तक आपके भक्त नहीं बन जाएंगे। तो जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम भगवान के चरणों की पूर्णतः शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे करेंगे, तब तक जो हमारे इच्छाएं हैं वो हमारा मन, हमारे मन का सुख और चैन हरती रहेंगी, चोरी करती रहेंगी। आप इकट्ठा करोगे फटाक से चोरी कर लेंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, हमेशा घर के बारे में सोचते रहोगे, पैर में जैसे बेड़ी बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही भगवान की शरण ली, जैसे ही भगवान के शरणागत हो गए, तो भगवान के शरणागत हो गए मतलब ये सोचना कि सारी वस्तुएं भगवान की है, हर वस्तु भगवान की है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही वस्तु है, वो क्या है? अहंकार पास में पहुंच गया। सो मेरी एक ही वस्तु है जो मेरी है, वो क्या है? जो भगवान ने हमें दे रखी है, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इच्छा। हम इच्छा कर सकते हैं ना, क्या करना है? वो भगवान ने हमें दे के रखा है, चलो भैया यूज कर लेना इसको। उसको हमने भगवान के सेवा में स्वेच्छा से करिष्ये वचना तवा, जैसे अर्जुन ने बोला, भगवान ने अर्जुन को बोला, अब भैया तुम्हें सब समझा दिया है, जो करना है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं बोला, जान चुकी, दिमाग खराब कर दिया, बोल बोल के 700 श्लोक बोल दिए। अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा, हाँ, अर्जुन ने तुरंत भगवान को बोला, अपनी इच्छा से नहीं करूंगा, मैं अपनी इच्छा आपको स्वेच्छा से समर्पित करता हूँ। इसका मतलब क्या है? करिष्ये वचना तवा, हे कृष्णा, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। हमारे लिए इसका क्या मतलब है कि हम गुरु को बोलेंगे कि हे गुरुदेव, जैसा आप हमें आज्ञा देंगे हम वैसे करेंगे। तो जब हम हर वस्तु, अपना शरीर, अपना घर, अपने संबंधी, अपनी धन संपत्ति, जब हम हर वस्तु को भगवान की संपत्ति समझेंगे और स्वयं को उसका चौकीदार समझेंगे, तब क्या होगा? तो उस समय क्या होगा? तो एक बहुत महान आचार्य हुए प्रबोधानंद सरस्वती। आप में से कितने लोग जानते हैं प्रबोधानंद सरस्वती को? सो आप भी जानते हो। तो कौन है प्रबोधानंद सरस्वती? नाम सुना हुआ है, इक्विवेलेंट नहीं बोलते, समकालीन बोलते हैं। समकालीन भी नहीं थे, समकालीन थे क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा है वो, तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे तो उस समय प्रबोधानंद सरस्वती भी इस धराधाम पर मौजूद थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 प्रमुख भक्त हैं उनमें एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला कि प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि है कालियादह वृंदावन, आप जाएंगे तो तो जहाँ पर भगवान ने कालिया दमन किया था तो वहीं पर प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि है, थोड़ा छिपी हुई है, जो भक्त जानता है वही वहाँ पहुँच सकता है, हर किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्योंकि हमारे इंद्रियां पूर्ण है, बीच में एक पर्दा भी आ जाए तो दिखना बंद हो जाता है। सब बिल्कुल कालिया दहे पे ही है, लेकिन पता नहीं होने की वजह से लोग वहां जा नहीं पाते। तो प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं कि दुर्दांत इंद्रियां, कि जो हमारे इंद्रियां हैं वो दुर्दांत है। हाँ, दुर्दांत मतलब जैसे हमने कहा बहुत जालिम इंद्रियां हमारे, बहुत ही कठोर है, हमें कष्ट दिए जा रहे हैं, दुर्दांत इंद्रियां। और क्या कर रही है वो, काल सर्प पटली, जैसे एक बहुत ही विषैला सांप हमें बार बार काटे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर भगवान की शरण ली हमने, अगर हम भगवान के जो है समर्पित हो गए, चरण कमलों में भगवान की सेवा में अगर हम लग गए, तो क्या होगा, प्रोत्खात उखाड़ ली जाएंगे, दमश्रायते, जो उसके जहरीले दांत हैं सांप के, जो काल सर्प है उसके जो जहरीले दांत अगर उखाड़ लिए जाए, वो फिर काटेगा अगर, तो क्या होगा, थोड़ा सा पेन होगा काटने से, ऐसा नहीं कह सकते कि दर्द नहीं होगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो मतलब कष्ट आएंगे, अगर भगवान की शरण ली तो जो 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 हमारी इंद्रियां हैं, अगर हमने भगवान की सेवा में लगा दी, अगर हमने अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया, तो जो इतना दुर्दांत है, एक सांप की तरह विषैले कोबरा सांप की तरह हमें बार बार काट के हमें बार बार मरने पे मजबूर कर रहे हैं, तो भगवान की शरण लेंगे तो शरण लेने से क्या होगा कि उसके जो जहरीले दांत हैं वो निकाल लिए जाएंगे। उस समय हमारा मन और इंद्रियां प्रयास बहुत करेंगे लेकिन हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। हम अपने इंद्रियों को, अपने वशी को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपने प्रयास से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लें तो वो संभव नहीं है। हाँ, अगर हम सोचें कि भगवान की शरण लेने का क्या पॉइंट है, इंद्रियों को तो वश में करना है, अपने प्रयास से कर लेते हैं। हाँ, विश्वामित्र ने किया, दुर्वासा मुनि ने किया, सोभारी ऋषि ने किया, लेकिन हम देखते हैं कि तीनों असफल हो गए, तीनों को जो है असफलता का सामना करना पड़ा, वो अपने पद से नीचे गिर गए, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन जब तक भगवान की शरण नहीं ले, यावत कृष्ण नाते जना, जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हम कितने ही प्रयास कर लें, तब तक हम जो जो हमारी इंद्रियां और जो हमारा मन जो काल सर्प की तरह हमें बार बार ढसे जा रहा है और हमें बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, भगवान की कृपा की आकांक्षा नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी इंद्रियां हमें परेशान करती रहेंगी। तो भगवान की शरण लेना वो महत्वपूर्ण है, और जब भगवान की शरण लेंगे, जब उस सांप के दांत टूट जाएंगे तो क्या होगा, विश्वम पूर्ण सुखायते, जो पूरा संसार है वो सुख में हो जाएगा, तब दुखालयम अशाश्वतम नहीं रहेगा, तब जो संसार है वो दुख नहीं देगा ना, जो उस समय जो संसार है वो सुख का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान परम सुखदाई है, भगवान सुख के आगार है, और जो वस्तु भगवान की है वो भी भगवान की तरह सुख देने वाली है। तो जब हम इस संसार को भगवान की संपत्ति के रूप में देखने का अभ्यास कर लेंगे तो ये संसार हमें दुखदायी नहीं लगेगा, तो ये संसार हमें सुख प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, इसको हम यहीं में विराम देते हैं। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को विमोह हो गया, ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, तो ऐसा क्यों हुआ है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आप कितने ही बड़े भक्त क्यों ना बन जाओ, आप कितने ही बड़े बड़े कार्य क्यों ना कर लो, कभी भी गर्वित मत होना, कभी भी अपने मन में ये मत सोच लेना कि मैंने ये कर दिया, मैंने कितने सारे भक्त बना दिए, मैंने कितने सारे मंदिर बना दिए। हाँ, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद आप देखेंगे, प्रभुपाद ने पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया, लेकिन प्रभुपाद से कभी कोई बोलता था कि प्रभुपाद आपने कितना पूरा अद्भुत कार्य किया, तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे गुरु की कृपा है, ये सब मेरे गुरु ने किया, मैं तो एक कठपुतली हूँ, है ना? तो ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आ गया था कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा कर रहा हूँ। और ब्रह्मा जी भगवान को, एक कारण ये भी था कि ब्रह्मा जी भगवान को अपने इंद्रियों से समझने की चेष्टा कर रहे थे। तो हमने एक बार चर्चा की थी कि दो तरह का ज्ञान होता है, आरोह ज्ञान और अवरोह ज्ञान। तो आरोह ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, और इंद्रिय जनित ज्ञान जो होता है वो अपूर्ण होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रियों की मदद से भगवान को समझने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें असफलता देखनी पड़ी। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के इस उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि आप अपने दिमाग से ये मत सोचो कि आप अपने इंद्रियों और मन से मुझे समझ सकते हो, मुझे कोई भी समझ नहीं सकता है। और ब्रह्म विमोहन लीला से भगवान ने ये बताया, और भगवान ने ब्रह्मा जी पर विशेष कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी को उस मोह में डाला ताकि ब्रह्मा जी और अच्छे से भक्ति में लग पाए। ठीक है, और किसका प्रश्न? क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु 100 दिव्य वर्ष नहीं है। जो दिव्य वर्ष है, यहाँ पर भागवतम में उसका वर्णन है, दिव्य वर्ष एक दिव्य वर्ष है जो देवताओं के अनुसार चलता है, दिव्य वर्ष। और जो ब्रह्मा जी की आयु है वो अरबों करोड़ अरबों 311 ट्रिलियन ईयर्स, प्रभुपाद भगवद गीता में बता रहे हैं 311 ट्रिलियन ईयर्स है ब्रह्मा जी की आयु। तो उसमें से कुछ करोड़ वर्ष जो है ब्रह्मा जी ने मेडिटेशन में ध्यान में लगाए, पूरी आयु नहीं लगाई। हमारे जो वर्ष है, जो हमारा समय अलग चल रहा है, देवताओं का समय अलग चल रहा है, ब्रह्मा जी की आयु अलग कैलकुलेशन चल रही है, जिससे जैसे हम हरेक लोक में समय का जो कैलकुलेशन है अलग चल रहा है। जो निम्न लोक हैं उनको उनके मुकाबले हम लोग करोड़ों वर्ष धीरे हैं। तो हरेक लोक में, स्वर्ग लोक में जो दिव्य वर्ष है वो स्वर्ग लोक के अनुसार चल रहे हैं। जो दिव्य वर्ष यहाँ पे बात हो रही है, तो ब्रह्मा जी की आयु उसकी तुलना में भी वो एक क्षण दो क्षणों के बराबर है, तो ब्रह्मा जी की आयु उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात अलग है कि ब्रह्मा जी भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जिन दिव्य वर्षों की बात की गई है वो इंद्र इत्यादि देवताओं के अनुसार है। हाँ, और ब्रह्मा जी की जो आयु है उससे भी आगे जाकर उससे भी बहुत ज़्यादा उनकी आयु है ब्रह्मा जी की। ठीक है, हाँ जी, आपका तो बेटा हमें जो परिवार के लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोले हमारा मुंह नहीं टूटता, है ना। हमारा मुंह इसलिए नहीं टूटता क्योंकि हमें डर लगा रहता है, हमारे मन में डर होता है। क्या डर होता है कि अभी तो चलो ये गाली गलौज कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, रोटी तो खिला रहा है, बीमार हो जाएंगे तो सेवा तो करेगा, दवाई दिलवाएगा। ये भय है, जो माया है वो हमें भय के द्वारा नियंत्रित करती है। तो एक्चुअली में मोह नहीं होता, भय होता है। हम भय को मोह समझ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे मृगारी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तो मृगारी जो व्याध था, मृग अरी, जो मृग का मतलब पशु और अरी मतलब दुश्मन, जो जानवरों का दुश्मन था, व्याध था, वो ये सोच रहा था कि ये धनुष, हाँ, ये मेरा पालन कर रहा है। तो नारद जी ने उसको बताया कि तुम्हारा पालन धनुष नहीं कर रहा, तुम्हारा पालन कृष्ण कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने इस बात को सुना, उसने अपना धनुष तोड़ के फेंक दिया और भगवान की भक्ति में लगा। तो क्या मृगारी को कुछ कमी आई? बहुत सारा सम्मान आया। हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो सुख और दुख है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं, चाहे हमारे परिवार वाले हमारे साथ नहीं है। जो आपके जीवन में सुख और दुख है भोगने ही है। हम डर के मारे ये सोचते हैं कि घर में रहेंगे तो हो सकता है हमें कम दुख मिले। बिल्कुल बेवकूफ़ी, कई लोगों को घर में ज़्यादा दुख मिलते हैं। कई लोग जो हैं, बाहर के लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं, घर में जाते गाली गलौज और अपमान शुरू हो जाता है। सो अगर घर वाले अगर सम्मान नहीं करें तुरंत छोड़ देना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए घर से, अगर आपके नाम पे है, हाँ, या तो उनको निकाल दें। क्यों नहीं निकलेगा? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ संभव नहीं है, लेकिन अगर मकान के कागज आपके नाम पर होने चाहिए, कहीं पता चले, कई लोग मुंह में आके पहले बाद में भी तेरा है अभी तेरा कर देते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे आप अपने नाम पे रखो अपनी प्रॉपर्टी को, जब आप मर जाओ उनको लड़ने झगड़ने दो, आपको क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना। लेकिन जैसे आपने अपने मकान के कागज उनके नाम किए, बस उसके बाद आपका सम्मान ही नहीं करेंगे। चाहे पूरे संसार के लोग इकट्ठे हो गए और आपको बोले देखो अपने बेटे के नाम कर दो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे कहा मैं भाड़ में जाता हूँ, होने दे प्रॉब्लम मुझे क्या, जब मैं मर गया तो होने दे प्रॉब्लम, मुझे क्या लेना देना। जब तक तो आपके नाम पे होगी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस आपके नाम पे है, तब तक आप कुछ आराम से रह सकते हो। हाथ कटवा लिए फिर क्या होगा, है ना। जहां पर सम्मान नहीं है, या तो दूसरे को निकाल दो या खुद निकल जाओ, फायदा क्या हमारा रहने का। जो सुख दुख आपके भाग्य में मिलेगा ही, है ना। ठीक है, आप अगर अपने मन में दुख का अनुभव नहीं कर रहे, दांत टूट चुके हैं उसके, अगर आप प्रभावित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसका मतलब दांत लगे हुए हैं उसके। वो आप डिसाइड, आपको आप अपने अंदर टटोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सांप के भी विष के दांत निकले कि नहीं निकले। ठीक है ना, चलो बहुत लेट हो गई, यहीं पे इसको विराम देते हैं।